नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री आज झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार में 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता की प्रतिबद्धता जीवन भर की प्रतिज्ञा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के प्रण ले। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों की अटूट भावनाओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के केवल 15 दिन में देश में 27 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 28 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें महात्मा गांधी और देश की अन्य महान हस्तियों के सपनों के भारत को सच्चाई में बदलने के लिए प्रेरित करता है। श्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में सभी देशवासियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं, एथलीटों, मशहूर हस्तियों और गैर सरकारी संगठनों तथा मीडिया कर्मियों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने आज से शुरू किए गए परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाई मिलेगी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ भारत मिशन विश्व का सबसे बड़ा और लोगों की भागीदारी से तथा लोगों के नेतृत्व में चलाए गए इस सदी का सबसे सफल और बृहद आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में अमृत और अमृत टू, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन और गोवर्धन योजना के तहत 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पटेल, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति राज्य मंत्री राजू भूषण चौधरी, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू और विभिन्न मंत्रालय के सचिव उपस्थित थे। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावास में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। रियाद में भारतीय दूतावास ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले 2 सप्ताह के अभियान में दूतावास के अधिकारियों, कर्मचारियों और सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉ हरिनी अमरसूरिया और भारत के उच्च आयुक्त संतोष झा ने गांधी जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने विजय घाट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के एक दिन के दौरे पर रांची पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में 79,150 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महान महाअभियान के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री 25 एकलव्य स्कूल की आधारशिला और 40 एकलव्य स्कूल का लोकार्पण भी करेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा और रोड शो पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। बिहार में बाढ़ से सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और कटिहार आदि क्षेत्र में गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य में गंडक और कोसी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। वहीं बागमती, कमला बलान और महानंदा नदी भी उफान पर है। बाढ़ के कारण अब तक 16 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किए गए पंजीकरण की संख्या में सितंबर में 1,59,000 यूनिट तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,29,000 यूनिट अधिक है। सरकार ने वाहन डेटा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण की संख्या में साल दर साल 23% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही छमाही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को इस योजना का अनुमोदन किया था। पीएम ई ड्राइव योजना देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में तेजी लाने और रिचार्ज के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाएगी, जो स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देगी। महाराष्ट्र के पुणे में वावधन में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकॉप्टर मुंबई जा रहा था। खबरों के अनुसार दुर्घटना सुबह 7 बजे से पहले हुई। पुलिस ने 2 पायलट और 1 इंजीनियर के मारे जाने की पुष्टि की है। पिनपरी चिंचवाड़ के संयुक्त पुलिस आयुक्त शशिकांत महावारकर ने बताया कि हेलीकॉप्टर ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स रिसोर्ट से जुहू की उड़ान पर था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली आरंभिक सूचना से लगता है कि हेरिजेट एविएशन के इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते समय धुंध थी। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरा चिंता व्यक्त करते हुए सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आपसी टकराव को रोकने पर भी जोर दिया है। सूडान के खार्तून में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत के आवास पर हमले की खबर पर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि किसी भी संघर्ष में राजनयिक परिसर पर हमला न करने की नीति का सम्मान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणबीर जसवाल ने कहा कि भारत सूडान की सुरक्षा स्थिति पर नजर रखे हुए है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। एक परामर्श में मंत्रालय ने ईरान में रह रहे लोगों से सतर्क रहने और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह क्षेत्र में हाल ही के घटनाक्रम में सुरक्षा स्थिति पर नजर रखे हुए है। निशानेबाजी में भारत ने पेरू के लिमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में चौथे दिन 5 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में दिव्यांशी ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को फाइनल में 2 अंक से हराया और 35 अंक हासिल किए। वहीं दिव्यांशी के लिए वह दूसरा स्वर्ण पदक था। उन्होंने भारत की तेजस्वनी और विभूति भाटिया के साथ मिलकर जूनियर महिला 25 मीटर पिस्तौल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। शीर्ष निशानेबाज मुकेश नील बल्ली ने दो और स्वर्ण पदक हासिल किया। इस चैंपियनशिप में अब तक उनके पदकों की संख्या 3 हो गई है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।